मई 2022 की प्रहरी दुर्ग, अध्ययन लेख 19। इस लेख का अध्ययन 4 से 10 जुलाई के दौरान किया जाएगा। विषय: प्रकाशित वाक्य में हमारे लिए सीख। यह लेख प्रकाशित वाक्य 1:3 पर आधारित है, जहां लिखा है, सुखी है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन जोर से पढ़ता है। गीत 15। यहोवा के पहलौठे की तारीफ करें। एक झलक। हम एक बहुत रोमांचक दौर में जी रहे हैं। आज प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इस लेख में और अगले 2 लेखों में हम प्रकाशित वाक्य की खास बातों के बारे में जानेंगे। जब हम इन बातों को ध्यान में रखकर यहोवा की उपासना करेंगे तो वो हमसे खुश होगा। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल: हमें प्रकाशित वाक्य में लिखी बातों के बारे में क्यों जानना चाहिए? मान लीजिए आप किसी परिवार से मिलने जाते हैं और वो आपको अपना फोटो एल्बम दिखाते हैं। आपको उसमें बहुत से नए चेहरे दिखते हैं, लेकिन तभी आपकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है। उसमें आप भी हैं। आप उस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखते हैं। आप देखते हैं कि आपके साथ कौन कौन है और याद करने लगते हैं कि वो तस्वीर कब और कहां ली गई थी। प्रकाशित वाक्य की किताब भी उस तस्वीर जैसी है। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? इसकी 2 वजह है। पहली, ये किताब हमारे लिए लिखवाई गई है। इसकी पहली आयत में लिखा है, ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने प्रकट की, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि वो उसके दासों को दिखाए कि बहुत जल्द क्या क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1:1। इन शब्दों से पता चलता है कि ये किताब सभी इंसानों के लिए नहीं, बल्कि खास तौर से परमेश्वर के लोगों के लिए लिखवाई गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हम प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां पूरा करने में हिस्सा ले रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है मानो उस तस्वीर में हम खुद को देख रहे हैं। पैराग्राफ 3 और 4। सवाल का: प्रकाशित वाक्य की किताब के मुताबिक इसमें लिखी भविष्यवाणियां कब पूरी होती? सवाल ख: आज हम में से हर एक के लिए क्या करना जरूरी है? प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों पर ध्यान देने की दूसरी वजह है कि ये हमारे दिनों में पूरी हो रही हैं। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? प्रेषित यूहन्ना ने लिखा, मैं पवित्र शक्ति से उभारे जाने पर प्रभु के दिन में पहुंच गया। प्रकाशित वाक्य 1:10। ये बात यूहन्ना ने ईस्वी सन 96 में लिखी, लेकिन तब तक प्रभु का दिन शुरू नहीं हुआ था। बाइबल की भविष्यवाणियों से पता चलता है कि प्रभु का दिन 1914 में शुरू हुआ, जब यीशु स्वर्ग में राजा बना। तब से परमेश्वर के लोगों के बारे में प्रकाशित वाक्य में दर्ज भविष्यवाणियां पूरी होने लगीं। आज हम सब प्रभु के दिन में ही जी रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रकाशित वाक्य 1:3 में दी सलाह पर ध्यान दें। वहां लिखा है, सुखी है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन जोर से पढ़ता है, और वो भी जो उन्हें सुनते हैं और इसमें लिखी बातों पर चलते हैं, क्योंकि तय किया गया वक्त पास है। हमें इन बातों को जोर से पढ़ना है, सुनना है और इन पर चलना है। तो आइए इनमें से कुछ बातों पर ध्यान दें। क्या यहोवा आपकी उपासना से खुश है? पैराग्राफ 5। सवाल: अगर हम चाहते हैं कि यहोवा हमारी उपासना से खुश हो, तो हमें किसकी सलाह माननी चाहिए और क्यों? प्रकाशित वाक्य के शुरुआती अध्याय में बताया गया है कि यीशु ने एशिया माइनर की 7 मंडलियों को अलग अलग संदेश भेजे। उन्हें पढ़ने से पता चलता है कि वो उनके हालात अच्छी तरह जानता था। उसने उन्हें साफ साफ हिदायत दी कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि यहोवा उनकी उपासना से खुश हो। इससे हम क्या सीखते हैं? आज भी यीशु अच्छी तरह जानता है कि मंडलियों में क्या हो रहा है। वो हमारा अगुआ है और हमारा मार्गदर्शन करता है। उसकी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। वो जानता है कि हम में से हर एक का यहोवा के साथ कैसा रिश्ता है, और ये भी कि यहोवा की मंजूरी पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसने एशिया माइनर की मंडलियों को जो सलाह दी, उससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए जानें कि उसने उन मंडलियों से क्या कहा। पैराग्राफ 6। सवाल क: जैसे प्रकाशित वाक्य 2:3 और 4 से पता चलता है, इफिसुस की मंडली में क्या समस्या थी? सवाल ख: इससे हम क्या सीखते हैं? प्रकाशित वाक्य 2:3-4 में लिखा है, तू धीरज भी धरता है और तूने मेरे नाम की खातिर बहुत कुछ सहा है और तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। फिर भी मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है कि तुझ में अब वो प्यार नहीं रहा जो पहले था। हमें यहोवा के लिए अपना प्यार कम नहीं होने देना चाहिए। यीशु ने इफिसुस की मंडली को जो संदेश भेजा उसे पता चलता है कि वहां के भाई बहनों ने बहुत सी तकलीफें सही थीं, फिर भी उन्होंने धीरज रखा और वो यहोवा की सेवा करते रहे। लेकिन उनमें यहोवा के लिए पहले जैसा प्यार नहीं था, उन्हें वो प्यार बढ़ाना था, तभी यहोवा उनकी उपासना से खुश होता। उसी तरह जब हम पर तकलीफें आती हैं तो हम धीरज रखते हैं, लेकिन यहोवा सिर्फ ये नहीं देखता कि हम धीरज रख रहे हैं, बल्कि वो ये भी देखता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चाहता है कि हम इसलिए उसकी उपासना करें क्योंकि हम उससे दिलो जान से प्यार करते हैं और उसका एहसान मानते हैं। पैराग्राफ 7, सवाल क, प्रकाशित वाक्य 3:1-3 के मुताबिक सर्दीस की मंडली में क्या समस्या थी। सवाल ख, हमें जागते रहने के लिए क्या करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 3:1-3 में लिखा है, सर्दीस की मंडली के दूत को ये लिख, वो जिसके पास परमेश्वर की 7 पवित्र शक्तियां हैं और 7 तारे हैं, वो कहता है, मैं तेरे काम जानता हूं। लोग समझते हैं कि तू जिंदा है मगर तू मरा हुआ है, इसलिए चौकन्ना हो जा और जो बची हुई चीजें मरने वाली है उन्हें मजबूत कर, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे परमेश्वर के सामने तूने अपने काम पूरे नहीं किए, इसलिए तूने जो जो पाया और सुना है उस पर हमेशा ध्यान दे और उस पर चलता रह और पश्चाताप कर। अगर तू जागेगा नहीं तो मैं अचानक चोर की तरह आऊंगा और तुझे खबर भी नहीं होगी कि मैं किस खड़ी आऊंगा। हमें जागते रहना चाहिए। सर्दीस की मंडली के भाई बहन पहले बढ़ चढ़कर सेवा करते थे, लेकिन अब वो ढीले पड़ने लगे थे, इसलिए यीशु ने उन्हें जागने को कहा। यह सच है कि यहोवा हमारे काम कभी नहीं भूलेगा, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैंने सालों साल यहोवा की सेवा की है, अब मैं थोड़ा बहुत भी करूंगा तो चलेगा। हो सकता है अपने हालात की वजह से हम ज्यादा सेवा न कर पाए, लेकिन प्रभु की सेवा में हमसे जितना हो सके हमें उतना करना चाहिए। इस तरह हम अंत आने तक जागते रह पाएंगे। पैराग्राफ 8, सवाल, यीशु ने लौदीकिया की मंडली को जो सलाह दी उससे हम क्या सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:15-17 में लिखा है, मैं तेरे काम जानता हूं कि तू न तो ठंडा है न गरम, काश तू या तो ठंडा होता या फिर गरम। तू गुनगुना है, तू ना ठंडा है ना गरम, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने जा रहा हूं। तू कहता है, मैं अमीर हूं और मैंने बहुत दौलत हासिल की है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर तू नहीं जानता कि तू कितना लाचार, बेहाल, गरीब, अंधा और नंगा है। हमें दिल लगाकर यहोवा की उपासना करनी चाहिए। लौदीकिया की मंडली के भाई बहन उपासना करने में गुनगुने हो गए थे, इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि वो लाचार और बेहाल हैं। उसने उन्हें सलाह दी कि वो जोश से यहोवा की सेवा करें। इससे हम क्या सीखते हैं? अगर यहोवा की सेवा करने में हमारा जोश कम होने लगा है तो हमें उसे बढ़ाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यहोवा और उसका संगठन हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। हमें कभी भी ऐशो आराम की चीजें इकट्ठा करने में नहीं लग जाना चाहिए, वरना हम यहोवा की सेवा को नजरअंदाज करने लगेंगे। पैराग्राफ 9, सवाल, पिरगमुन और थुआतिरा के मसीहियों की तरह आज हमारे सामने भी कौन सा खतरा है? हमें धर्म त्यागियों की शिक्षाओं से कोसों दूर रहना चाहिए। यीशु ने पिरगमुन की मंडली के कुछ भाई बहनों को कड़ी सलाह दी क्योंकि वो इंसानी सोच फैलाकर मंडली में फूट पैदा कर रहे थे, लेकिन उसने थुआतिरा की मंडली के उन भाई बहनों की तारीफ की जिन्होंने खुद को शैतान की गूढ़ बातों से दूर रखा। उसने उन्हें बढ़ावा दिया कि वो सच्चाई को मजबूती से थामे रहें। प्रकाशित वाक्य 2:24-26, इन दोनों मंडलियों में कुछ मसीहियों का विश्वास कमजोर पड़ गया था जिस वजह से वो धर्म त्यागियों की बातों में आ गए, इसलिए उन्हें पश्चाताप करना था। आज हमारे दिनों में भी धर्म त्यागी यहोवा के संगठन के खिलाफ बातें करते हैं हो सकता है एक नजर में लगे कि वो बाइबल की शिक्षाएं मानते हैं, पर उनके काम कुछ और ही दिखाते हैं, इसलिए हमें उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अगर हम बाइबल का गहराई से अध्ययन करेंगे तो ही हम धर्म त्यागियों की फैलाई झूठी शिक्षाओं को पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे। पैराग्राफ 10। सवाल: यीशु ने पिरगमुन और थुआतिरा की मंडलियों को जो सलाह दी, उससे हम क्या सीखते हैं? हमें हर तरह के अनैतिक काम से दूर रहना चाहिए। पिरगमुन और थुआतिरा की मंडलियों में एक और समस्या थी। वहां के कुछ लोग नाजायज यौन संबंध जैसे गंभीर पाप को हल्के में ले रहे थे, इसलिए यीशु ने उन्हें कड़े शब्दों में सलाह दी। इससे हम क्या सीखते हैं? हमें सभी अनैतिक कामों से दूर रहना चाहिए और उन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने सालों से यहोवा की सेवा कर रहा हूं और इतनी जिम्मेदारियां संभाल रहा हूं, तो अगर मैं ये पाप करूं यहोवा मुझे माफ कर देगा। दुनिया के नैतिक स्तर चाहे कितने ही गिर जाएं, यहोवा चाहता है कि हम उसके ठहराए ऊंचे स्तरों को माने। पैराग्राफ 11। सवाल: अब तक हमने क्या सीखा? इस लेख से हमने अब तक क्या सीखा? हमें यहोवा की उपासना करने के साथ साथ सही काम भी करने चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे यहोवा को नफरत है, तो हमें वो काम करना तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना हमारी उपासना बेकार हो जाएगी। यीशु ने एशिया माइनर की मंडलियों को जो संदेश भेजा, उससे हम कुछ और भी सीखते हैं। आइए जानें। कुछ और जानकारी। हमारे लिए सीख: हमें यहोवा के लिए अपना प्यार कम नहीं होने देना चाहिए। हमें जागते रहना चाहिए। हमें दिल लगाकर यहोवा की उपासना करनी चाहिए। हमें धर्म त्यागियों की शिक्षाओं से कोसों दूर रहना चाहिए। हमें हर तरह के अनैतिक काम से दूर रहना चाहिए। वापस लेख पर: जुल्म सहने के लिए तैयार रहिए। पैराग्राफ 12। सवाल: यीशु ने स्मुर्ना और फिलाडेल्फिया की मंडलियों को जो संदेश भेजा, उससे हमें क्या सीख मिलती है? अब आइए देखते हैं कि यीशु ने स्मुर्ना और फिलाडेल्फिया की मंडलियों को क्या संदेश भेजा। उसने वहां के भाई बहनों से कहा कि वो जुल्मों से न डरें, क्योंकि अगर वो वफादार रहेंगे तो आगे चलकर उन्हें इनाम मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, तू जो तकलीफें झेलने वाला है उनसे मत डर। देखो, शैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाता रहेगा ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। इससे हम क्या सीखते हैं? ये बात पक्की है कि हमें भी सताया जाएगा, पर हमें जुल्म सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज इस सलाह पर ध्यान देना और भी जरूरी है। पैराग्राफ 13 और 14। सवाल: जब से शैतान को धरती पर फेंका गया है, तब से परमेश्वर के लोगों के साथ क्या हो रहा है? प्रकाशित वाक्य की किताब से पता चलता है कि परमेश्वर के लोगों को प्रभु के दिन में सताया जाएगा, यानी हमारे दिनों में। आइए जानें कि जब प्रभु का दिन शुरू हुआ तब क्या हुआ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में बताया गया है कि जब स्वर्ग में परमेश्वर का राज शुरू हुआ, तो इसके तुरंत बाद वहां एक युद्ध छिड़ गया। मिकाएल यानी यीशु मसीह और उसकी सेनाओं ने शैतान और दुष्ट स्वर्गदूतों से युद्ध किया। नतीजा, शैतान और उसके साथी हार गए और उन्हें धरती पर फेंक दिया गया। इसके बाद से वो सभी इंसानों पर और भी ज्यादा तकलीफें लाने लगे। और परमेश्वर के लोगों के साथ क्या होने लगा? शैतान के लिए स्वर्ग जाने का रास्ता बंद हो गया था, इसलिए वो अपना गुस्सा धरती पर बचे हुए अभिषिक्त जनों पर निकालने लगा। वो जानता है कि वो आगे चलकर परमेश्वर के राज में राज करेंगे, और उन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला है, इसलिए वो उन पर जुल्म करने लगा। प्रकाशित वाक्य 12:17। आइए जानें कि उसने ये कैसे किया। पैराग्राफ 15। सवाल: प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में बताए दो गवाह कौन हैं और उनके साथ क्या हुआ? शैतान ने उन अभिषिक्त भाइयों पर निशाना साधा जो प्रचार काम की अगुवाई कर रहे थे। उन भाइयों को प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में दो गवाह कहा गया है, जिन्हें मार डाला जाता। फुटनोट: 15 नवंबर 2014 की प्रहरी दुर्ग के पेज 30 पर दिया लेख आपने पूछा पढ़ें। फुटनोट समाप्त। यह भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? 1918 में अगुवाई करने वाले 8 भाइयों पर झूठे इल्जाम लगाए गए और उनमें से हर एक को लंबे समय तक जेल की सजा हुई। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि प्रचार काम पूरी तरह ठप पड़ गया है। पैराग्राफ 16। सवाल, सन 1919 में क्या हुआ और तब से शैतान क्या कर रहा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में यह भी बताया था कि उन दो गवाहों को कुछ ही वक्त बाद जिंदा किया जाएगा। यह बात कैसे पूरी हुई? अगुवाई करने वाले भाइयों को जेल में डालने के अगले ही साल यानी 1919 में जेल से रिहा कर दिया गया और उन पर लगे सारे इल्जाम हटा दिए गए। जेल से छूटते ही वो जोर शोर से प्रचार काम करने लगे, लेकिन शैतान चुप नहीं बैठा। उसने परमेश्वर के लोगों पर नदी की धारा छोड़ी है, यानी वो उन पर लगातार जुल्म कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 12:15। इसी वजह से आज हम में से हर एक को धीरज धरना है और विश्वास रखना है। प्रकाशित वाक्य 13:10। पैराग्राफ 12-16 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, जब शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया तब से वो परमेश्वर के लोगों पर कैसे हमला कर रहा है। यहोवा से मिला काम अच्छी तरह कीजिए। पैराग्राफ 17। सवाल, परमेश्वर के लोगों को किनसे मदद मिलती है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में आगे बताया गया है कि परमेश्वर के लोगों को कुछ मदद मिलती है जिसकी वो उम्मीद नहीं करते। आयत 16 में लिखा है कि शैतान ने उन पर जो नदी की धारा छोड़ी है, पृथ्वी उसे निगल लेती है। इसका क्या मतलब है? हालांकि शैतान परमेश्वर के लोगों पर तकलीफें लाता है, लेकिन कई बार उसी की दुनिया के कुछ अधिकारी उनकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, कई मौकों पर अदालतों ने यहोवा के साक्षियों के पक्ष में फैसले सुनाए हैं। इससे उन्हें अपना काम करने की आजादी मिली है और वो खुलकर प्रचार कर पाते हैं। लेकिन वो किस संदेश का प्रचार करते हैं? पैराग्राफ 18। सवाल, अंत आने से पहले हमें कौन सा काम करना है? यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि उसके चेले अंत आने से पहले पूरी दुनिया में परमेश्वर के राज की खुशखबरी का प्रचार करेंगे, मत्ती 24:14। लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर रहे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक स्वर्गदूत के पास सदा तक कायम रहने वाली खुशखबरी है, ताकि वो इसे धरती पर रहने वालों को यानी हर राष्ट्र, गोत्र, भाषा और जाति के लोगों को सुनाए। प्रकाशित वाक्य 14:6। इससे पता चलता है कि राज का प्रचार करने में स्वर्गदूत भी परमेश्वर के लोगों की मदद करते हैं। पैराग्राफ 19। सवाल, यहोवा के लोग और कौन सा संदेश सुनाते हैं? परमेश्वर के लोग सिर्फ राज की खुशखबरी नहीं सुनाते, बल्कि वो शैतान की दुनिया के लोगों को न्याय दंड भी सुनाते हैं। उनके इस संदेश की तुलना आग और ओलों से की गई है। प्रकाशित वाक्य 8:7-13। इस तरह वो स्वर्गदूतों के काम में उनका साथ दे रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8-10 में बताया है कि स्वर्गदूत ऐलान करते हैं कि जो लोग परमेश्वर के राज के अधीन नहीं होते उन पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। यहोवा के साक्षी जानते हैं कि लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, इसलिए वो लोगों को बता रहे हैं कि अगर वो अंत आने से पहले खुद को बदलेंगे तभी यहोवा के क्रोध के दिन वो बच पाएंगे। पर बहुत से लोगों को यह संदेश पसंद नहीं आता, इसलिए इसे सुनाने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। जब महासंकट शुरू होगा तब हमें और भी हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि उस वक्त हम आखिरी बार लोगों को सीधे सीधे न्याय का संदेश सुनाएंगे और बहुत से लोग हमारा विरोध करेंगे। पैराग्राफ 18 और 19 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, आज परमेश्वर के लोग कौन से दो संदेश सुना रहे हैं? इस भविष्यवाणी के वचन पर चलिए। पैराग्राफ 20। सवाल, अगले दो लेखों में हम क्या जानेंगे? आज प्रकाशित वाक्य की कई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यही नहीं, इन्हें पूरा करने में हम भी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हमें इसमें लिखी बातों को मानना चाहिए। हमें जुल्म सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और हिम्मत से प्रचार करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम प्रकाशित वाक्य में बताई दो बातें याद रख सकते हैं। पहली, परमेश्वर के दुश्मनों का क्या होगा, और दूसरी, अगर हम यहोवा के वफादार रहेंगे तो हमें कौन सी आशीषें मिलेंगी। अगले दो लेखों में हम इसी बारे में जानेंगे। आपका जवाब क्या होगा? यीशु ने 7 मंडलियों को जो संदेश भेजे उनसे हम क्या सीखते हैं? हमें जुल्म सहने के लिए क्यों तैयार रहना चाहिए? अंत के इस समय में परमेश्वर के लोगों को कौन सा काम करना है? गीत 32, यहोवा की ओर हो जा। लेख समाप्त।